أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ ہالینڈ کا 16th جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے اور کل انشاءاللہ جماعت یو کے کی مجلس شورا اور وہ بھی 16th مجلس شورا ہے منعقد ہوگی. حمید صاحب کی طرف سے تاکیدی پیغام ملا ہے کہ وہ چونکہ میری وہاں شورا میں عدم موجودگی کو محسوس کریں گے اس لیے ان کے لیے کچھ دلداری کا انتظام ہونا چاہیے. بس آج کے خطبے میں میں جہاں جماعت ہالینڈ کو مخاطب ہوں وہاں مجلس شورا یو کے کو بھی مخاطب ہوں اور آج ہی انشاءاللہ یا کل صبح یہاں سے یہ کیسٹ ویڈیو کیسٹ وہاں پہنچا دی جائے گی تو انشاءاللہ وہ میرے اس پیغام کو ویڈیو میں دیکھ بھی سکیں گے اور سن بھی سکیں گے. اس مضمون کا جو میں آج چھیڑنے لگا ہوں صفات باری سے ہی تعلق ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہر مضمون کا صفات باری تعالیٰ سے تعلق ہے. تمام نظام کائنات صفات باری تعالیٰ سے پھوٹتا ہے اور کوئی بھی قانون قدرت ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا جس کا کسی اسم الہی سے یا صفت الہی سے تعلق نہ ہو. تو نظام جماعت بھی صفات باری تعالیٰ ہی کا ایک انعکاس ہے اور اسی وقت تک زندہ ہے اسی وقت تک روحانی ہے جب تک صفات باری تعالیٰ سے ایک رسمی نہیں بلکہ حقیقی تعلق قائم رکھتا ہے. اس ضمن میں میں گزشتہ خطبے اس کے تعلق گزشتہ خطبے میں جو سلام کی بات کر رہا تھا اسی سے متعلق میں چند مزید باتیں کہوں گا. سلام سے مراد ہے مکمل امن, کسی قسم کا خوف نہیں, تسکین قلب, طمانیت قلب, ہر وہ چیز جو ہر خوف سے آزاد کر دے اور آزاد اپنی ذات میں بھی اندرونی اندیشوں اور ہیجانوں سے آزاد کر دے اس کا اصل کامل نام سلام ہے. اور سلام کا لفظ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور ذات پر اطلاق نہیں پا سکتا کیونکہ ایک خدائی ہے جو ہر خوف سے پاک ہے اور ہر ضرورت سے پاک ہے, اس لیے اس کو کوئی خطرہ نہیں कि कभी मुझे कोई चीज़ छोड़ के चली जाए और मुझ में कमज़ोरी वाक़िया हो जाए। इसी तरह वो सिफ़ात के लिहाज से भी कुलियतन अमन में है, क्योंकि उसकी सिफ़ात में कभी कोई ऐसी तब्दीली पैदा नहीं हो सकती जो एक पुराने खुदा को एक नए खुदा से जुदा करने वाली हो, और ये कहा जा सके कि पहले तो ये सिफ़त उसमें बड़ी क़ुव्वत के साथ पाई जाती थी, अब उसमें कमी वाक़िया हो गई है। और ये वो चीज़ है जो मैंने पहले भी बयान की थी, अल्लाह को ज़माने से पाक करार देती है और ज़माने से बाला करार देती है। हर दूसरा शख्स चाहे बड़ी से बड़ी क़ुव्वत का मालिक हो, उसकी क़ुव्वत में इन्हितात है। वो एक वक्त तक उरूज कर रहा होता है और उस उरूज के बाद फिर इन्हितात पज़ीर हो जाता है। जब वो उरूज कर रहा होता है तो उसका माजी नामुकम्मल रहता है, और हमेशा इंसान वापस देखकर ये कह सकता है कि मैं तो इतना कमज़ोर था, और रफ्ता रफ्ता मुझ में ये ताकतें आईं तो मैं मुकम्मल हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि ये उसकी तकमील महज एक नस्बती चीज़ है, वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। जो रफ्ता रफ्ता तरक्की करके ताकत पकड़ता है वो एक ऐसी मंजिल की तरफ रवा है जिसका उसे कोई इल्म नहीं कि कमाल कहाँ है और किस मकाम पर जाकर कमाल हासिल होगा, और कमाल से पहले उसका जवाल शुरू हो जाता है। बस हर चीज़ या बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है या जवाल पजीर दिखाई दे रही है। रोज़ का सूरज भी हमें यही पैगाम देता है, बस ना सूरज के लिए अमन है ना इंसानी ताकतों के लिए अमन है, जो रफ्ता रफ्ता तरक्की भी करती हैं और फिर तनज़ुल भी इख्तियार करती हैं। मगर एक खुदा की ज़ात है जो ज़माने के इन तासुरात से बाला है और उसे ज़माने की तब्दीलियाँ छू नहीं सकती। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सलाम की तफसीर में लिखा है कि सलाम वही ज़ात है जो हर ख़तरे से पाक हो, अंदरूनी ख़तरा हो या बैरूनी ख़तरा हो। अंदरूनी ख़तरे की बात मैंने खोली है, बैरूनी ख़तरे के लिहाज से जब तक वो क़ादिर और तवाना ना हो वो सलाम नहीं हो सकता। जब तक उसे कुदरत ना हो कि अगर कोई चीज़ उससे रूगर्दानी करती है तो वो उससे बेहतर पैदा कर सकता है, और अगर ना भी पैदा करे तो अपनी ज़ात में वो उसकी उसका मोहताज नहीं है। जब तक ये ना हो उस वक्त तक वो ज़ात सलाम नहीं कहला सकती। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो सलाम की तारीफ़ फरमाई उसमें हकीकत में बहुत सी दूसरी सिफ़ात जलवागर दिखाई देती हैं। एक लफ्ज़ सलाम में बकसरत खुदा ताला की दूसरी सिफ़ात ताल्लुक रखते हुए अपने जलवे दिखाती हैं, और इस्लाम को समझना हो तो सलाम को इस पहलू से समझना ज़रूरी है। क़ुरान करीम में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाता है कि अल्लाह ने उसे फरमाया अस्लिम वक़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, ए इब्राहीम सलाम हो जा, सलामती में आ जा, अस्लिम अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दे। ये दोनों माने इस एक लफ्ज़ अस्लिम में शामिल हैं। अस्लिम का मतलब है सलामती में आ जा, और दूसरा मतलब है अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दे। अमूमन जो लुगात हैं वो ये दोनों माने अलग अलग बयान करती हैं। सलाम का एक मतलब है अमन और एक मतलब है सुपुर्दगी, हालांकि एक ही माना है, इसमें दो माने मौजूद ही नहीं, एक माने के दो पहलू हैं। कोई ज़ात अमन में आ ही नहीं सकती जब तक अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द न कर दे, और वो ज़ात जो सलाम है उसकी हिफाजत के बग़ैर कोई ना कोई पहलू इंसान का ऐसा है जहाँ से वो खौफ ज़दा रहेगा। सिर्फ सलाम ज़ात है जो हर पहलू से खौफ के ख़िलाफ़ एक ऐसा कला है जिसके अंदर खौफ दाखिल हो ही नहीं सकता, ऐसा एक मज़बूत हिसार है जिसके अंदर خوف کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. بس جب تک سلام کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو کہ انسان اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دے, اس وقت تک ہر قسم کے خوف رہتے ہیں. اور جتنا زیادہ کوئی سلام کے اندر یعنی اپنے سر کو جھکاتے ہوئے داخل ہوتا ہے, سلام سے مراد خدا ہے. اور جب میں کہتا ہوں سلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآنی محاورہ ہے, الذین جاہدوا فینا, جو ہمارے اندر جد و جہد کرتے ہیں. تو مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی ایسی جگہ ہے جس میں انسان داخل ہو رہا ہے, مراد یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں ڈوب رہا ہے اور صفات باری تعالیٰ میں اپنے آپ کو غرق کرتے چلے جانا اور دنیا سے بظاہر غائب اور صفات میں گہرا اندرونی سفر اختیار کرنا, یہی دراصل جہدو فینا کا معنی ہے کہ جو لوگ ہمارے اندر جد و جہد کرتے ہیں ہم خود ان کو پکڑ کر ان کی ہدایت کے سامان کرتے ہیں. تو سلام کے پہلو سے یاد رکھنا چاہیے کہ سلام میں بھی جب تک خدا یعنی سلام کی ذات میں مومن اپنے آپ کو غائب نہیں کرتا, اس وقت تک جس پہلو سے اس نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا ہے وہ پہلو اس کا خطرے میں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے, میں نے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے میں چونکہ انہوں نے امین خدا کے تعلق سے اپنے آپ کو امانت دار بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے سپرد خزانے کیے, ان کے سپرد وہ بھائی کر دیے جو ان کو بے ایمان بددیانت سمجھتے تھے, اور ہر ایک دنیا والے کی گردن ان کے سامنے جھکا دی. بالکل یہی مضمون حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق میں بھی دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم, ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین, میں تو پہلے ہی فرما بردار ہوں. جب آگ میں جھونکنے کا وقت آیا تو اس وقت خدا تعالیٰ نے جو آگ سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے, یہ حضرت ابراہیم کے اسلام میں داخل ہونے کی بہت عظیم گواہی ہے. یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلام بن جا, کیونکہ یہ میرا بندہ ہے, سلام کا بندہ ہے, اور سلام کے بندے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بس وہ لفظ سلام بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے حق میں, ان کے اسلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم دائمی گواہی دے دی کہ واقعی وہ بندہ اس دعوے میں سچا تھا کہ اسلمت لرب العالمین. سلام کے تعلق میں جہاں تک نظام جماعت کا تعلق ہے, ہم سلام ہی کو نظام جماعت میں کار فرما دیکھتے ہیں, اور اس پہلو سے سلام کا ایک گہرا تعلق غنی سے ہے. خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یا اسماء میں سے ایک اسم غنی ہے. غنی وہ شخص ہوتا ہے یا وہ وجود ہوتا ہے جس سے اگر کوئی اپنا تعلق توڑ لے یا اپنی مدد اس کو بند کر دے تو اس کی ذات میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا. اس وقت تعلق توڑنے والا ننگا ہو جاتا ہے, اور اس وقت سمجھ آتی ہے کہ دراصل اس کا سہارا اس کو نہیں تھا بلکہ تعلق قائم رکھنے والا اس دھوکے میں مبتلا تھا کہ میری وجہ سے سلام کو کوئی طاقت ملی ہے. بس وہ ذات غنی کہلاتی ہے. پھر جو سلام ہو وہ غنی بھی ہوگی, جس کو کسی ذات سے کسی تعلق میں کوئی خطرہ نہیں, وہ از خود غنی بھی بن جاتی ہے. بس یہ معنی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات ایک دوسرے سے پھوٹ رہی ہیں, ایک پہلو سے ایک صفت دوسری صفت کو پیدا کر رہی ہے, دوسرے پہلو سے دوسری صفت پہلی صفت کو پیدا کر رہی ہے, اور ایک دائمی لازم ملزوم کا تعلق ہے جو زاویہ بدلنے سے بہت ہی دلکش رنگوں میں دکھائی دینے لگتا ہے, نئے نئے خوبصورت رنگ اس سے پھوٹتے ہیں. بس غنی وہ ذات ہے کہ جس کو احتیاج کوئی نہیں, اور سلام کے یہ معنی یہاں ہوں گے کہ خدا کی ذات کو اگر تم اس سے تعلق جوڑو گے تو कोई फायदा इस हद तक नहीं होगा कि वो तुम उसे कुछ दे सकते हो, और जब तुम ताल्लुक काटोगे तो उससे कुछ ले नहीं सकते, उसकी ताकत से कुछ निकाल नहीं सकते। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को यूं बयान फरमाया कि खुदा ताला गनी और मुस्तगनी इन मानों में है कि अगर एक इंसान उससे सारी कायनात जो कुछ भी है वो मांग ले, जहाँ तक उसका जहन जा सकता है मांग ले और वो उसको दे दे, तो उसकी खुदाई में इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना एक सुई को समंदर में डुबो के निकाला जाए और उसके उसके नके से जो किनारा है, बारीक चोंच है उसकी, उससे जितना पानी चिमटा रहता है वो समंदरों में जितनी कमी कर सकता है उतनी कमी भी खुदा की खुदाई में नहीं हो सकती। और अगर कोई ताल्लुक तोड़ता है तो इतना भी नुकसान उसको नहीं पहुंचा सकता। बस सलाम और गनी दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम का ताल्लुक रखते हैं। बस अल्लाह ताला जब कुरान करीम में फरमाता है कि सलामती के साथ ताल्लुक जोड़ो, सलाम में दाखिल हो जाओ, तो उसकी एक तारीफ फरमाता है और वो ये है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अमवाल अनफुसहुम व अमवाल बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें भी खरीद ली हैं और उनके अमवाल भी खरीद लिए हैं, उनके नहीं रहे। और जन्नत जो सलाम है वो इसके बदले उनको अता होगी। जन्नत को सलाम कहना इसलिए दुरुस्त बल्कि हकीकत है कि कुरान करीम ने जन्नत की तारीफ ये कही, ये फरमाई है कि वहाँ सलाम सलाम के सिवा कुछ नहीं होगा, सलामन सलामा, हर तरफ सलामती ही सलामती है। बस खुदा के वो बंदे जो वफात पाने लगते हैं उनको भी यही फरिश्ते पैगाम देते हैं कि तुम सलामती में आ रहे हो। बस सलाम का लफ्ज़ तब इतलाक़ पाता है इंसान पर जब वो इस तरह अपने आप को सुपुर्द करे कि ना उसकी जान अपनी रहे ना उसके माल अपने रहें। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो मुकम्मल सलामती नसीब हुई वो इस बात का कतई सबूत था कि आपने अपनी जान भी पेश कर दी और अपने अम्वाल भी पेश कर दिए, अपना कुछ भी न रखा। ऐसी सूरत में जब सलाम खुदा उसका जवाब देता है तो सब कुछ उसका हो जाता है, कोई चीज़ भी उसके दायरे कुदरत से बाहर नहीं रहती, उसकी हर ख्वाहिश खुदा पूरी फरमाता है और ऐसे तरीक़ पर पूरी फरमाता है कि इंसान का तसव्वुर भी उन बातों का नहीं पहुंच सकता। ना दुनिया में उसका कुछ रखता है, ना दीन में उसका कुछ रखता है, ना रूहानी ताकतों के लिहाज से, ना कल्बी ताकतों के लिहाज से। जो कुछ भी इंसान खर्च करता चला जाता है अल्लाह उसे उससे बढ़कर अता करता चला जाता है। बस सलाम इन मानों में भी है कि उसको जो दोगे वो ज़ाया नहीं हो सकता, हर दूसरी चीज़ ज़ाया हो सकती है मगर जो खुदा के सपूत किया जाए वो कभी ज़ाया नहीं हो सकता। हर दूसरी चीज़ कम हो सकती है मगर जो खुदा के सपूत किया जाए वो कम कभी नहीं हो सकता। इस सलाम का ताल्लुक रहमानियत और रहीमियत से भी है। और ये मज़मून चूँकि फिर ज़्यादा वसी हो जाएगा इसलिए मैं मुख्तसरन इसी हवाले से रहीमियत से इसका ताल्लुक बताता हूँ कि ज़मींदार जो ज़मीन में बीज फेंकता है, जो कोई दाना मिट्टी में मिला देता है, रहीम खुदा उसमें से कुछ भी रखता नहीं बल्कि जो रखता है उससे बहुत ज़्यादा अता कर देता है। जो रखता है दरअसल वो नक्स वाले दाने को रख लेता है, उसे वापस नहीं करता, क्योंकि नक्स वाले दाने अगर फूटें तो नक्स वाले बीमार बीज पैदा करेंगे, उनमें से सेहतमंद को इख्तियार फरमाता है और सेहतमंद को फिर इतना बढ़ा देता है कि उसके मुकाबले पर जो दाने रखे गए उनकी कोई हैसियत ही नहीं रहती। यही निज़ाम है जो पैदाइश और तवल्लुद के साथ ताल्लुक रखता है। अरब हा अरब, जरासीम बज़ाहिर ज़ाया हो रहे हैं اور ان کے بدلے انسان کو جو ازدواجی تعلقات میں منسلک ہو کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن لوگوں کو یہ علم نہیں کہ خدا کا یہ نظام وہاں بھی کار فرما ہے کہ ہمیشہ اس کو واپس کرتا ہے اولاد کی صورت میں جو سب سے اعلیٰ ہو. یعنی اس مادے کے اندر جتنے بھی جراثیم ہیں ان کی دوڑ کرواتا ہے, ان کا مقابلہ کرواتا ہے, ان میں سے جو کمزور ہیں, جو ناقص ہیں, وہ وہاں اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں جا کر انہوں نے پھر بچے کی شکل اختیار کرنی ہے. اور جو پہنچ جاتے ہیں غلطی سے, یا کسی آدمی میں کمزور ہی کمزور ہوں سب جراثیم, تو پھر وہ پنپتے نہیں, پنپیں گے تو بیمار بچے کو پیدا کریں گے. لیکن اس میں بھی ایک خاص اللہ کا فضل ہے جو بیمار بچے کی صورت میں بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے. بیمار بچہ پیدا کرنے کا نقص خدا کا نہیں, قانون قدرت کا نہیں. وہ جو کچھ بھی گیا تھا اس میں سب سے اچھا وہ بھی بیمار ہی تھا, تو اسے لوٹا کر ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر زیادہ سے زیادہ جو صلاحیت تھی وہ یہ تھی, اور اس صلاحیت کو کم سے کم اس شکل میں دے دینا کہ وہ باہر نکل کر ایک آزاد زندگی اختیار کر سکے, یہ بھی اللہ کا فضل و رحم ہے, ورنہ تمہاری صلاحیت سے یہ بات بڑھ کر تھی. بس جو یہ نظام ہے کہ خدا رکھتا نہیں واپس کرتا ہے, یہ تمام کائنات پر حاوی ہے, اس میں کوئی استثنا نہیں ہے. جو رکھتا ہے اس سے بہتر واپس کرتا ہے, اور جو رکھتا ہے اس کے رکھنے میں فضل ہے. بس جتنے بھی بیج ہیں یا پھل نشو نما پاتے ہیں یا کائنات میں جتنی بھی زندگی قسمیں ہیں, یہ امتحانات میں آزمائی جاتی ہیں. ان میں سے ہمیشہ جو سب سے بہتر ہے وہ نشو نما پا کر آئندہ زمانے میں اس جنس کی نمائندگی کا حق حاصل کرتی چلی جاتی ہے. یہ ایک نظام ہے, کوئی اتفاقی حادثہ نہیں. بس ڈارون نے جب کہا کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ, تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ فٹیسٹ ہوتا کیا ہے. اس نے سروائیول آف دا فٹیسٹ کو اتفاقی حادثات یا موسمی حادثات کا نتیجہ قرار دیا. یہ بالکل غلط ہے. یہ فٹیسٹ کا نظام اتنا گہرا ہے اور اتنا باریک در باریک ہے کہ اگر آپ سارے اس نظام پر غور کریں تو اتفاقی حادثہ کے نتیجے میں فٹیسٹ کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتفاقی حادثات کے نتیجے میں اکثر گندے اور بیمار اور ناقص وجود اوپر آئیں گے, اور شاذ کے طور پر کوئی اچھا وجود اوپر ابھرے گا. مگر یہ بحث پھر طویل ہے, اس کو میں چھوڑتا ہوں. اتنا اشارہ کافی ہے کہ سلام کے دائرے میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کی ہر چیز کا نگہدار وہی بن جاتا ہے, ہر خطرے سے آپ کو بچاتا ہے, آپ کے اندرونی نقائص پر بھی نظر رکھتا ہے, کیونکہ آپ نے اندرونی طور پر بھی اپنے نفس کو ترک کر کے اس کے حضور سر تسلیم خم کر دیا. تو ایسا شخص جو سلام کے تعلق میں آ جائے, سلام کی چادر اوڑھ لے, اس کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کے تمام کام پھر اللہ خود بناتا ہے, جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال میں نے دی. تو اسلام کی تعریف اللہ نے یہ فرمایا, ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ مومنوں سے خدا نے ان کی جانوں کا بھی سودا کر لیا ہے, ان کے اموال کا بھی سودا کر لیا ہے. اور چونکہ وہ سلام ہے اس لیے غنی ہے. نظام جماعت کو کوئی شخص اپنی مدد کھینچ کر, مدد کا ہاتھ کھینچ کر, یا اپنی دولت واپس لے کر, یا مالی مدد سے ہاتھ اٹھا کر ایک ادنا ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں اپنا نقصان کرے گا. بس میری سی شورا جو یو کے میں منعقد ہو رہی ہے, میں ان کو پوری طرح حوصلہ دلاتا ہوں کہ اپنی طور پر وہی کریں جو خدا کرتا ہے. یعنی سلام کے جو طور اور انداز ہیں وہ اختیار کریں. ناقص بیج کو बेवजह इस खौफ से कि हमारे अंदर कमी ना आए ऊपर ना लाएं, और जो अच्छा है आपकी नज़र में चाहे कमज़ोर भी हो अगर तकवा रखता है और खुदा की सलामती की तारीफ़ में दाखिल है उसके ऊपर एतमाद करें। तमाम बरकतें ऐसे उहदेदारान से हैं जिन्होंने अपने आप को सुपुर्द किया हुआ है, क्योंकि उनके गिर्द खुदा की सलामती का दायरा है, उनकी हिफाजत कर रहा है, उनके गिर्द खुदा की सलामती की एक वसील है जो उनको हर खतरे से बचाए हुए है। बस ऐसे लोग जब निज़ाम जमात में काम करते हैं तो उनके कामों में भी वही सलामती की बरकतें मिलती हैं। वो लोग जो कहते हैं कि ये तो दुनियादारी है, जो आप लोग चंदों पर जोर देते हैं, चंदा ना दिया जाए या कमज़ोरी दिखाई जाए तो कहते हैं तुम वोट नहीं दे सकते, ये भी दरअसल उनका तकब्बुर है। और वो ये नहीं समझते कि जब वो चंदा देते हैं तो अल्लाह को उसकी कोई हिर्स नहीं है। दो उसूल पेश नज़र रखने चाहिए। अल्लाह अगर चाहता तो अपने निज़ाम को किसी बंदे की एहतियात से इस तरह भी कुल्लियतन पाक कर सकता था कि किसी चंदा मांगने की ज़रूरत ही पेश ना आती। वो जहाँ से चाहता जिस तरह चाहता अपने निज़ाम की ज़रूरतें पूरी फरमा सकता था। फिर चंदे का निज़ाम क्यों है? इसलिए कि सुपुर्दगी का इम्तिहान है, और बग़ैर इस इम्तिहान में कामयाब हुए कोई शख्स सलामती में दाखिल नहीं हो सकता। सुपुर्दगी में जान भी है और माल भी है। बस जब खुदा कहता है कि तुमसे मैंने सुपुर्दगी का सौदा किया है तो कैसे मुमकिन है कि हर शख्स अज खुद ही उसमें पास होता चला जाए, उसका कोई इम्तिहान ना हो। बस खुदा माल लेता है इस इम्तिहान की वजह से कि वाकईतन तुमने सुपुर्द किया है या नहीं किया। अगर सुपुर्द कर बैठे हो तो फिर अगला कदम ये जमानत का है कि चूंकि तुम सलामती के इम्तिहान में पूरा उतरे और अपने आप को माली लिहाज से भी खुदा के सुपुर्द कर दिया, इसलिए अब से तुम्हारी माल की हिफाजत का जिम्मेदार खुदा है, तुम्हारी सारी ज़रूरतें वो पूरी करेगा, तुम्हें हर नुकसान से वो बचाएगा। और वो लोग जो अपना भी तजर्बा रखते हैं और दूसरों का भी तजर्बा रखते हैं, जो जमात अहमदिया की तारीख से वाकिफ़ हैं, वो कतई तौर पर खुदा के पाक नामों की कस्में खा कर ये गवाही दे सकते हैं इस वादे में खुदा हमेशा सच्चा निकलता है। कभी अपनी राह में खुलूस के साथ कुर्बानी करने वालों को जलील और रुसवा नहीं करता, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो लिखते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोग जो वली बन जाते हैं, ये वली भी ऐसे लोगों की तारीफ़ है जो अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, तो अम्बिया से नीचे नीचे वो वली कहलाते हैं। फरमाया अल्लाह ताला वली की औलाद को 7 पुश्तों तक भूखा नहीं रखता और 7 पुश्तों तक उनको दूसरों के सामने जलील रुसवा नहीं होने देता। लेकिन इस मज़मून में बाज़ इस्तिस्ना भी दिखाई देते हैं, वो क्यों हैं इस बहस को मैं यहाँ नहीं छेड़ना चाहता। गालिबन अपने एक पुराने खुतबे में मैंने तफसील से इस मज़मून पर रोशनी डाली थी। अब मैं वापस आता हूँ इस तरफ कि जमात को जो ज़रूरत है वो ज़रूरत अल्लाह ने पूरी करनी है, और निज़ाम जमात सलाम में दाखिल है। अगर निज़ाम जमात का कोई नुमाइंदगा इस वजह से किसी शख्स से निज़ाम के खिलाफ रियायत का सलूक करता है कि समझता है कि उसकी ज़रूरत है, उसके सामने कुछ झुकना चाहिए, वो अमीर है, वो साहिब हैसियत है, वो सियासी लिहाज से ताल्लुक़ वाला है, इसलिए इसके सामने अगर निज़ाम बाज़ बातों से आंखें बंद कर ले और इसके फवायद पर नज़र रखते हुए इससे नरमी का सलूक करे तो ये शिर्क है, ये सलाम के मज़मून के ख़िलाफ़ है। जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, अल्लाह ताला के जारी करदा कानून में अगर कोई शख्स सर्फ नज़र करते हुए अंदरूनी ख़तरों के नतीजे में जो उसके दिल में कहीं ना कहीं पनप रहे हैं, इस डर से कि इस बड़े आदमी से अगर निज़ाम जमात का आम सलूक किया गया तो ये मुंह मोड़ लेगा, इसकी औलाद चली जाएगी, इसका जत्था हाथ से जाता रहेगा। जब कोई शख्स ऐसी बात सोचता है तो मुशरिक हो जाता है। उसका हज़रत इब्राहिम और इब्राहिमी सलाम से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं रहता। बस बाज़ दफ़ा बाज़ लोग समझते हैं कि ऐसे मामलात में मैं सख्ती करता हूँ, हालांकि मेरी तबीयत में कोई सख्ती नहीं है, मगर मेरी मजबूरियाँ हैं। मैं इस बात पर मामूर फरमाया गया हूँ कि खुदा ताला की सिफात हसना के ताबे निज़ाम जमात को रखूँ, वरना यह निज़ाम तमाम बरकतों से महरूम रह जाएगा। इसलिए इसके मामले में मेरे दिल में कोई रियायत नहीं है, कोई खौफ नहीं है। बारहा ऐसा हुआ है, बाज़ बज़ाहिर दुनिया के लिहाज से बड़े आदमियों ने गलती की, उनकी औलादों ने ऐसी गलती की जिनके नतीजे में उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, और सिफारिशें आईं कि ये तो बहुत बड़े ख़ानदान के सरबराह लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बासर लोग हैं, इनसे अगर सरफ़ नज़र किया जाए तो बेहतर है, निज़ाम जमात के लिए बेहतर है। उनको मैंने लिखा कि इसका मतलब यह है कि तुम इस बात के अहल ही नहीं हो कि निज़ाम जमात की जिम्मेदारियाँ अदा करो। जिस वक्त तुम इस शिर्क में मुब्तला हुए कि कुछ चौधरी इतने बड़े हैं, कुछ ठेकेदार इतने बड़े बड़े हैं, कुछ सियासतदान ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कि उनके साथ नरमी ना की गई तो सारे इलाके में अहमियत को नुकसान पहुँचेगा, उसी वक्त तुमने अपने आप को तो हलाक कर लिया। और निज़ाम जमात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसकी फ़िक्र खुदा पे छोड़ो, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने कैसे कहाँ कहाँ से निज़ाम जमात पर फजल फरमाने हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि निज़ाम जमात को ख़तरे कहाँ कहाँ से हैं। उसकी खातिर उसके बनाए हुए कवानीन पर अमल करते हुए अगर आप निज़ाम की हुरमत और उसके वक़ार की हिफाजत पर मुस्तैद रहते हैं तो अल्लाह ताला खुद आपकी भी हिफाजत फरमाएगा और निज़ाम जमात को हर ख़तरे से बचाएगा। और हमेशा यही होता है, बस आज तक कभी मैंने निज़ाम जमात को किसी का मोहताज ना समझा, ना किसी को इजाज़त दी कि वो इस तरह समझकर मोहताज होने दे, और एक ज़र्रा भी परवाह नहीं की कि निज़ाम जमात की अमलदारी में कोई शख्स शाकी होकर, नाराज़ होकर मुँह मोड़ता है, मदद से हाथ खींचता है, ये अपनी औलाद को बर्बाद करता है। करता है तो वो ज़िम्मेदार है, लेकिन खुदा के ख़जानों में कोई कमी नहीं आ सकती। और जहाँ भी ऐसा वाक़िया हुआ है वहाँ सारी जमात की तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को ज़लील और रुस्वा कर दिया, उनके सारे तकबर तोड़ दिए, और जमात पहले से बहुत बढ़कर तरक्की कर चुकी है और करती चली जा रही है। बस निज़ाम जमात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसका एहतराम हॉलैंड में भी उसी तरह लाजिम है जिस तरह यूके में लाजिम है, और मजलिस शूरा के दौरान ख़ास तौर पर इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि वही सिलसिले के मुखलिसीन आगे आएँ जो अगर अपनी सुपुर्दगी में यानी सलामती में कामिल ना भी हों तो कम से कम सलामती की तरफ सफ़र इख्तियार कर चुके हैं, इंच इंच ज़र्रा ज़र्रा कुछ ना कुछ इस तरफ बढ़ रहे हैं। वही हैं जो इस लायक हैं कि खुदा के सलामती के निज़ाम में यानी इस्लाम में उनको नुमाइंदगी मिले, उनको खिदमत के मौके मिलें, और उन्हीं की खिदमतें हैं जो बरकत का मूजिब होंगी, बरकत का मूजिब होंगी। बाकी खिदमतों की हमें कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि खिदमतों की परवाह नहीं, तो ये मुराद नहीं है कि उन लोगों की परवाह नहीं। इस सिलसिले में मैं पुरानी आयात के हवाले से कुछ मज़ीद आखिर पर जाके मज़मून खोलूँगा। अब मैं कुरान करीम की वो आयात जहाँ लफ्ज़ गनी का इस्तेमाल हुआ है और सलामती के ताल्लुक में हमें ये लफ्ज़ क्या पैगाम देता है वो पढ़कर आपको सुनाता हूँ। सूरह फातिर 16वीं आयत में है, या अय्युहन नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद। ऐ बनी नौ इंसान, याद रखो तुम फ़कीर हो अल्लाह के हजूर, वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, और अल्लाह ही है जो गनी भी है और हमीद भी है। गनी अगर कोई हकीकत में हो तो वो हर चीज़ का मालिक होता है और हर चीज़ उसकी हो जाती है, उसकी हो तो वो गनी कहला सकता है, अगर कोई चीज़ उसकी ना हो तो उसकी तरफ उसकी नज़र होगी, और जिसकी किसी ऐसी चीज़ की तरफ नज़र हो जो उसकी नहीं है वो गनी नहीं कहला सकता। बस मोमिन फिर कैसे गनी बनेगा जब सब कुछ खुदा का है और बंदे का ये तमाम इंसानों का बहसियत मजमूई तो यानी इज्तमाही तौर पर या इनफरादी तौर पर कुछ भी नहीं है, तो खुदा की इस सिफ्त की पैरवी कैसे की जा सकती है, कैसे इस सिफ्त से ताल्लुक जोड़ा जा सकता है। इस मज़मून को हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया, इन्ना नफ्सा इन्ना गिना गिना नफ्से या गिना अल गिना गिना नफ्से, कि मोमिन का जहाँ तक ताल्लुक है उसकी गिना नफ्स की गिना से पैदा होती है, यानी एहतियाज के बावजूद अगर वो गैरुल्लाह से अपने आप को इस तरह बाला कर दे कि उसकी कोई अच्छी चीज़ की भी हिर्स उसके दिल में पैदा ना हो, उसके माल और दौलत उसके दिल पर रोब ना पैदा कर सकें, उसकी कोठियाँ उसकी कारें उसकी रहाइश के अंदाज उसके दबदबे उसकी सियासी ताल्लुकात उसका उसकी अकल उसका इल्म कोई चीज़ भी उस पर ये ऐसा रोब ना डाल सके कि उसे एहसास महरूमी हो, क्योंकि वो जब अल्लाह का हो चुका है तो ये एहसास कि मैं सलाम का नुमाइंदा हूँ ये उसे हर दूसरी चीज़ से मुस्तगनी कर देता है और हर हाल में अपने रब पर रब के लिए हुजूर राजी रहने पर उसको तमानियत कल्ब नसीब करता है। एक राजी रहना है जो मुंह से कहा जाता है कि अच्छा जिस तरह भी अल्लाह की मर्जी हम राजी, लेकिन दिल बेचैन रहते हैं, लोग अपने अजीज़ों से जो वफात पा जाते हैं जुदाई का सदमा महसूस करते हैं, हर वक्त आग लगी रहती है, लेकिन मुंह से यही कहते हैं कि अच्छा फिर जिस तरह खुदा की रज़ा उसी में हम राजी, और बाद लोग मौलिक बीमारियां लगा बैठते हैं। गम अपनी ज़ात में तो कोई गुनाह नहीं है, शिर्क नहीं है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमत और शफ़क़त के नतीजे में रोते थे अपने बच्चे की जुदाई पर भी, आपकी आंखों से आंसू रवा हुए, और जब किसी ने पूछा कि या रसूल आप, तो आपने फरमाया ये रहमत की निशानी है, इसमें इस बच्चे के लिए कोई ऐसा एहतियाज नहीं है कि ये हाथ से गया तो मैं बेचैन हो गया, लेकिन एक रहमत है और जिसका रहमत से हिस्सा नहीं उसके उसके पास कुछ भी नहीं, वो मरूम है। बस रहमत का मज़मून और गिना का मज़मून एक ताल्लुक़ रखता है, और इसी मज़मून को मैं आगे जाकर पुरानी आयत के हवाले से खोलूँगा। सरदस्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम फ़कीर हो, अल्लाह गनी है और हमीद है, यानी खुदा को तुम्हारी एहतियाज बिल्कुल नहीं है लेकिन हमीद है, वो काबिल तारीफ़ है। इसके दो माने बनते हैं, एक ये कि उसकी सिफत सिफात हमीदा इस बात का तकाजा कर रही हैं कि तुमसे प्यार करें, तुमसे ताल्लुक़ जोड़े, तुम्हारा तुम्हारी निगहदाश्त करें, इसलिए नहीं कि खुदा तुम्हारा मोहताज है बल्कि उसकी सिफात हमीदा अज़ खुद उसके अंदर झुक कर अपनी कमज़ोर मखलूक़ात से ताल्लुक़ रखने पर उसको आमादा करती हैं। दूसरा ये कि वो इतना गनी है कि अगर तुम तारीफ़ रोक लो और नाशुक्री का इजहार करो तो एक ज़र्रा भी उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जो अपनी ज़ात में हमीद हो उसके अंदर एक ऐसी अजमत किरदार पैदा हो जाती है कि वो दूसरों के की नज़र से भी मुस्तगनी हो जाता है, उनको पता लगे ना लगे वो मुस्तगनी होता है। अब लोग ये कहते हैं कि मैंने पहले भी ये मुहावरा आपके सामने रखा था, पंजाबी का है लेकिन है अच्छा दिलचस्प मुहावरा, कि सुते पुत्र दा मुँह की चुमना, जो बच्चा सोया हुआ है उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है लेकिन माएँ तो चूमती हैं, इसलिए नहीं कि उनको उस बच्चे की अप्रिसिएशन की एहतियाज है,
इसलिए वो हमीद हैं, इन मानों में कि उनकी सिफात हमीदा उस बच्चे से बगैर किसी इवज के प्यार करने पर उनको मजबूर करती हैं। तो वहाँ थोड़ी सी झलकी माँ की रब और रहमान खुदा से हमें दिखाई देती है, क्योंकि रहमी ताल्लुक के लिहाज से इंसानी रिश्तों में सबसे करीब तर रिश्ता माँ का बच्चे से है, और वहाँ उसको ये परवाह नहीं होती, बच्चे को पता भी है कि नहीं। कई मफलूज बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं इस सफ़र के दौरान भी मुझे दिखाए गए, उनको कोई होश नहीं थी, कुछ पता नहीं था, और उनको संभालना बहुत तकलीफ दे काम है, मगर माएँ थीं जो फिदा थीं और जानती हैं कि अगर ये वफौत पा हो जाए तो हमें निजात मिल जाएगी, मगर ज़िंदगी की दुआएँ करती हैं। ये हमीद सिफ्त का एक इजहार है, लेकिन मामूली सा। अल्लाह ताला तमाम मखलूक से जो ताल्लुक़ रखता है, एहतियाज के नतीजे में नहीं, गनी होने के बावजूद, लेकिन इंसान हर ताल्लुक़ में अपने आप को ये नहीं कह दिखा सकता कि मैं गनी हूँ फिर भी ताल्लुक़ रखता हूँ। माँ अगर रखती है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, मगर उसमें भी दर्जा कमाल को नहीं पहुँचती, और बसा औक़ात जब तक उसकी वो ज़रूरतें पूरे करने वाला बच्चा हो उस वक्त तक ताल्लुक रहता है, जिस हद तक वो कम हो जाए उतना ही वो कम ताल्लुक होता चला जाता है। बाज़ माएँ कहती हैं सब बच्चे बराबर, लेकिन जो खिदमत कर रहा है उससे ज़्यादा प्यार होता है, जो और सिफात हसना रख कर अब इख्तियार करके माँ का नाम रोशन करने वाला है उससे ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो गनी उन हमीद का ये माना इंसानी लिहाज से एक आर्जी माना है, मगर अल्लाह ताला जहाँ शुक्रगुजार है वहाँ बंदे की खूबियों के लिए उन पर रहमत से झुककर उनको कबूल फरमाता है, मगर एहतियाज की खातिर नहीं। इसलिए गनी उन हमीद का इकट्ठा मुहावरा खुदा की सिफात को इंसानी सिफात से मुमताज़ कर देता है। आप कह सकते हैं वरना अगर इन गनी उन हमीद को जोड़ करना पड़े तो ये सवाल उठ सकता है कि अल्लाह ताला भी तो अपने अंबिया की बड़ी कदर करता है, अपने लिए कुर्बानी करने वालों की बड़ी कदर करता है। तो गनी उन हमीद का इकट्ठा मुहावरा हमें बता रहा है वो करता है गनी होने के बावजूद, ज़रूरत नहीं है, और इस पहलू से उसका ताल्लुक रखना उसे और भी ज़्यादा हमीद बनाकर दिखाता है, यानी अपने ऐसे बंदों से ताल्लुक जोड़ लेता है जो उसके जिसका ताल्लुक जिनका ताल्लुक उसकी ज़ात में, उसकी शान में, उसकी किबरियाई में एक ज़र्रा भी इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन उनसे झुकता है और उनकी बड़ी शान बयान करता है, यहाँ तक कि नस्लन बदा नस्लन उन पर दुरूद भेजता है। और ये ताल्लुक हज़रत इब्राहिम के हवाले से फिर दोबारा याद आ जाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम के ऊपर सलाम भेजा गया है, ऐसा सलाम जो आने वाली नस्लें भी उस पर भेजेंगी। और दुरूद शरीफ में जो इब्राहिम का नाम सलाम के ताल्लुक में बयान हुआ है, ये खुदा के इस वादे की पूरा करने का एक नज़ारा है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरे साथ सलाम का ताल्लुक, तूने मेरे साथ सलाम का ताल्लुक बांधा है, मैं इस ताल्लुक की कदर करूंगा और क़यामत तक लोग तुझ पर सलाम भेजते रहेंगे। बस बाद लोग पूछते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरूद में इब्राहिम का नाम क्यों आया? उसकी वजह यह है कि सलाम तो सब नबियों के लिए आता है, लेकिन यानी कुरान करीम पढ़ के देख लें हर जगह सलाम का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है कि सलामती में दाखिल हुए थे तो उन पर सलाम भेजा गया, मगर ऐसा सलाम कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ब्रैकेट करके और किसी नबी का जिक्र ना करना और सिर्फ इब्राहिम का करना, ये एक ऐसी अजीम इम्तियाजी शान है जो उसी मुकालमे की याद दिलाती है, असलम काल असलम आला असलम तुल रब्बिल आलमीन, जब तेरे रब ने इब्राहिम से कहा कि सलाम इस्लाम कबूल कर कहा मैं तो इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, इतना कामिल इस्लाम जैसा इब्राहिम का था किसी और नबी को नसीब नहीं हुआ सवाए मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस एक दीन सलाम इब्राहिम का था, एक दीन सलाम जो इस्लाम बनकर उभरा वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। और इसका नुक्ता यही है कि खुदा के सुपुर्द अपना सब कुछ कर दिया जानते हुए कि ये कुछ भी नहीं है, खुदा की खुदाई में इससे एक ज़र्रे का भी इजाफा नहीं हो सकता था। इब्राहिम अगर मुंह मोड़ लेता तो खुदा को क्या नुकसान पहुंचना था, मगर दिल की गहराई से ये कहा है मैं सलाम कबूल कर चुका हूँ, मैं इस्लाम ले आया हूँ, तुझे सलाम जानता हूँ, तुझ में अपना सलाम देखता हूँ। और खुदा ने हमेशा हमेशा के लिए सलामती से उसका नाम रखा, इस कदर बढ़ा कर देने वाला है वो, तो वो गनी फिर क्यों ना हो। जो उसके बज़ाहिर उसके सुपुर्द होते हैं यानी अपने अपना सब कुछ उसके सुपुर्द करते हैं, उनसे वो ऐसा सलूक फरमाता चला जाता है कि वो उनकी कुर्बानी खुदा के सलूक के मुकाबले पर हकीर और भी हकीर और भी हकीर होती चली जाती, यहाँ तक कि उसकी कोई भी हैसियत बाकी नहीं रहती। जो कुछ इब्राहिम को अता हुआ है उसके मुकाबले पर जो इब्राहिम ने खुदा को दिया था उसका मुआवजा तो करके देखे, कुछ भी नहीं था। इन दुनिया के जो कदरों के लिहाज से अगर नापा जाए सिर्फ एक रूह की कदर थी जो अजीम शान थी, और उसी कदर पर खुदा ने नज़र रखी और उस कदर के नतीजे में ज़ाहरी कुर्बानी मामूली होने के बावजूद बे इंतहा अदा फरमाया। बस ये खुदा जो सलाम बनकर उभरता है ये गनी होते हुए हमीद है, ये नुक्ता है जो आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन करना चाहिए। अगर आप किसी से गनी हों और फिर हमीद भी हों तो ऐसे शख्स से आप मुतकब्बिर नहीं हो सकते। बस जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सब लोग अपने कुर्बानियाँ रोक लो मेरा कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकोगे, वहाँ अपनी रहमानियत का भी हवाला देता है। बस वो अगली आयत जिसमें ये मज़मून है सूरह मोहम्मद से ली गई है आयत 39, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है हा अंतुम हा उलाए तुदऊन आले तुनफिकु फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखल व मन यबखल फइन्नमा यबखल अन नफ्से वल्लाहु अलगनी व अंतुमुल फुकरा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। देखो हा अंतुम हा उलाए, सुनो तुम वो लोग हो कि जिनको बुलाया गया इस तरफ ले तुनफिकु फी सबीलिल्लाह कि अल्लाह की राह में खर्च करो। अब हा अंतुम हा उलाए से पता चलता है कि एजाज़ है जिसका जिक्र हो रहा है। ऐ लोगों तुम सोच नहीं रहे कि कितना बड़ा एजाज़ है कि खुदा ने तुम्हें चुन लिया कुर्बानियों के लिए, तुम्हें फरमाया कि तुम आओ, तुमसे तवक्कुआत रखी, और फिर बदनसीब ऐसे हैं तुम में से फमिनकुम मन यबखलु कि तुम में से ऐसे भी हैं जो बुखल करते हैं। और खुदा की राह में बुखल करना साबित करता है कि वो अल्लाह को मोती नहीं समझते बल्कि अपने घर की कमाई समझते हैं, अपने हाथ की होशियारी अपने जहन की चलाकी समझते हैं। कहते हैं हमने तो बड़ी मेहनत से कमाया है, बड़े दिन रात जागे इसके लिए, होशियारियाँ की, बाकी सब बेवकूफ़ों को क्यों ना दौलत मिल गई, हमारे जहन की जो बाला दस्ती है बरतरी है इसने हमें ये सब कुछ अदा किया है, और वह आ जाते हैं चंदे मांगने। वो जब ये कहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है फमिनकुम मन यबखलु व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्से कि याद रखो जो तुम में से बुखल करेगा वो अपने आप से बुखल कर रहा है, खुदा से बुखल नहीं कर रहा, उस ज़ात से ताल्लुक़ तोड़ रहा है जो देने वाली है। जब उसके सामने तुम सर उठाओगे तो दो बातों में से एक चीज़ ज़रूर होगी, और ये बुखल करने का जो मज़मून है ये दो तरह से खुलता है। अव्वल ये कि ऐसे शख्स की दौलत उसको कभी कोई सुकून नहीं पहुँचा सकती, हज़ार किस्म की आलाइशें लग जाती हैं उस दौलत में, कई किस्म के नुकसानात, कई किस्म के फिक्र, कई किस्म की बदनियतियाँ, और फिर हुकूमत की पकड़ का खौफ और मुसीबतें, और اولاد کی برکت جاتی رہتی ہے, گھروں کے سکون اٹھ جاتے ہیں, اور ایسی دولت کے متعلق سمجھ نہیں آتی کہ اس سے سکون خریدا کیسے جائے, کیونکہ جو بخل ہے, جو خدا سے بخل کرتا ہے, وہ دنیا میں بھی بخیل ہو جاتا ہے, اور اس کی دولت ایسی ہے جیسے بینک میں جمع ہے, اس سے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں. تو ایک تو یہ طریق ہے جس سے خدا بتاتا ہے کہ تم دراصل اپنے خلاف بخل کرتے ہو. دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک شخص کو بچانا ہو تو اس کی دولتوں کو دولت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے, اسے نقصان کے ابتلا آتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی, حالانکہ وہ خدا کی طرف سے آزمائش جو اپنے کسی بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کو بچانے کی خاطر آتی ہے, اسی میں اس کی نجات ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ اس دولت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, اگر اس ٹھوکر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری توجہ خدا کی طرف ہو جائے تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے, ساری دولتیں دے کر بھی اگر اللہ مل سکے تو یہ بہت اچھا سودا ہے. اسی طرح کی آزمائشیں بعض دفعہ جسمانی جانی نقصانات کے ذریعے بھی انسان کو لاحق ہوتی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کیا حرج تھا, ہمارا بچہ زندہ رہتا, ہمارا فلاں زندہ رہتا. تو دراصل وہ بخل وہاں دکھاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ سب عطا خدا کی تھی, اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سب سے بڑے عارف باللہ پیدا ہوئے ہیں, آپ فرماتے ہیں سب خدا کی عطاؤں کا ذکر کر کے, سب کچھ تیری عطا ہے, گھر سے تو کچھ نہ لائے. عظیم مضمون ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم اگر تیری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے, کہاں سے لے کے آئے تھے, تو نے ہی عطا کیا ہے. بس ایسا شخص جس کی ہر وقت خدا پر یہ نظر ہو کہ جو کچھ عطا ہوا ہے تو نے کیا ہے, اپنے گھر سے ہم کچھ نہیں لائے, ایسا شخص کبھی بھی خدا کے حضور بخیل نہیں ہو سکتا. اور جب وہ بخیل نہیں ہوتا تو پھر اللہ خود رحمت کا سلوک فرماتا ہے اور سب کچھ نہیں مانگتا. والذین یؤمنون باللہ ينفقون فی میں اب بتاتا ہوں بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, کہ جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے ہم سارا ان سے واپس نہیں مانگتے. مما رزقناہم ينفقون, اس میں سے کچھ واپس مانگتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ احسان فراموش تو نہیں, وہ بھول تو نہیں گئے کہ کس ذات نے ان کو دیا تھا, اور پیش کرتے وقت کس طرح پیش کرتے ہیں. یہ ساری آزمائشیں مومن کے اسلام کی آزمائشیں ہیں دراصل, جن میں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بسا اوقات پورا نہیں اترتا تو کئی قسم کے ابتلاؤں میں وہ ابتلا ہو جاتا ہے, اور اس کا بخل جو خدا کی طرف ہو رہا ہے وہ دراصل اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے, اس کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء, اے بے وقوفو اللہ تو غنی ہے, تمہارا ہاتھ روک لینا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, تم فقراء ہو, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم سارے کے سارے بھی پھر جاؤ تو اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے, ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یعنی کام تو اللہ کے پورے ہونے ہیں, تم نہیں کرو گے تو اور قوم آ جائے گی, ایک خاندان نہیں کرے گا تو دوسرے خاندان اٹھ کھڑے ہوں گے, اور یہ جو قانون ہے یہ ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ تاریخ مذاہب میں پر غور کرتے ہوئے آپ کو ایک بھی استثنا دکھائی نہیں دیتا. جب بھی کسی قوم نے استغنا کیا ہے خدا کے پیغام سے اور اس کی مدد سے منہ پھیرا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور قوموں کو لے آیا ہے, اور پھر وہ ویسے نہیں ہوئی جیسا کہ پہلی ناشکری قوم تھی. اور ایسا ہی خاندانوں کا حال ہے, ایسا ہی افراد کا حال ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الغنی ذو الرحمہ, اللہ غنی تو ہے مگر شقاوت قلبی کی وجہ سے نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ جو غنی بنتے ہیں نظام کی نمائندگی میں, ان کے لیے لازم ہے کہ ان کی غنا اپنے نفس کی شقاوت کی وجہ سے نہ ہو, بے پرواہی کی وجہ سے نہ ہو, اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں جائے جہنم میں جو مرضی, ہمیں تو پرواہ کوئی نہیں, ہم تو نمائندہ ہیں نظام کے اور اللہ کا نظام ہے. یہ غنا کے معنی نہیں ہے. اللہ اپنی مثال دیتا ہے, واللہ رب ربک الغنی ذو الرحمہ, تیرا رب غنی ہے اور اس کے باوجود رحمت والا ہے, رحمت والا ہونے کے باوجود غنی ہے. بس جہاں بھی ان دونوں صفات کا تصادم ہوگا وہاں آپ صفات باری تعالیٰ سے دور ہٹ چکے ہوں گے, اور کوئی ایسا زندگی میں نظام جماعت کے کارکنوں کے لیے لمحہ نہیں آنا چاہیے جس میں ان کی غنا جو خدا کی خاطر ہو, نظام جماعت کی خاطر ہو, وہ ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے ہو, رحمت کی وجہ سے ہونی چاہیے. جس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ایسے لوگوں کو ذلت کے ساتھ نہیں دیکھتے, گھٹیا نہیں سمجھتے, اپنے سے ادنا نہیں سمجھتے, بلکہ ان پہ رحم کرتے ہیں اور رحم کی نظر ڈالتے ہیں کہ یہ بیچارے محروم ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ کس چیز سے محروم ہیں. اس لیے نیکی کا جو تکبر ہے وہ ان کو برباد نہیں کر سکتا. امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک پل صراط ہے جس پر ہم روزانہ چلتے ہیں, لیکن جانتے نہیں کہ یہاں کا پل صراط ہی ہے جو ہماری آئندہ کی تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے. نظام جماعت کے احترام اور اس کی عزت کے لیے سر بلند رہنا اور غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنا, یہ غنا ہے. مگر ایسے لوگوں سے جو بیچارے محروم رہ گئے, تکبر سے پیش آنا, ان کو اپنے سے گھٹیا اور ادنا سمجھنا, یہ رحمت کے خلاف ہے اور انکسار کے بھی خلاف ہے جو رحمت سے پیدا ہوتی ہے. ایک انکسار ہے جو کمزوری سے پیدا ہوتا ہے, اس انکسار کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے. ایک انکسار ہے جو رحمت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے, اور اللہ کا اپنے بندے پر جھکنا ایک قسم کا انکسار ہے جو رحمت سے پھوٹتا ہے. تو فرمایا غنی ہونے کے باوجود دیکھو وہ کس طرح رحمت کا سلوک فرماتا ہے, کس طرح اپنے بندوں پر جھکا رہتا ہے, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی غنا کسی شقاوت قلبی یعنی سختی کی وجہ سے نہیں تھی, بلکہ اس کی ایک شان ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. اب یہ دوسرا معاملہ جو سب اس کے محتاج ہیں, اگر خدا غنی ہے اور کسی کا محتاج نہ ہونے کا یہ مطلب ہو کہ سب سے تعلق توڑ لے, تو پھر دوسرے بھی اس کے محتاج نہیں رہیں گے, مر کھپ کے ختم ہو جائیں گے. تو یہ دوسرا مضمون ہے کہ ہر چیز اس کی محتاج ہے, یہ رحمت سے پوٹتا ہے. اس کی رحمت عامہ ہے جو ہر ذات کو اپنا محتاج کیے ہوئے ہے, اور اس کی رحمانیت ہے جو تمام بنی نوع انسان پر, خشک و تر پر برابر اثر انداز ہو رہی ہے. تو عجیب شان ہے کہ غنی بھی ہے اور رحمان بھی ہے, ایک لحاظ سے مستغنی ہو کر سمجھتا ہے, جانتا ہے کہ ان مخلوقات کا مجھ سے تعلق توڑنا ذرہ بھر میں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس کے باوجود ان سے رحمت کا بھی سلوک فرما رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے لوگوں کے اموال میں بھی برکت پڑ رہی ہے, لیکن یہ ایک عارضی برکت ہے, اس کی رحمانیت کے نتیجے میں ہے, مگر غنی سے تعلق توڑنے کے نتیجے میں جو سزا مقدر ہے اس وہ رک نہیں سکتی, وہ اپنی جگہ کار فرما ہوگی. لیکن وہ بندے جو نظام جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے لیے اس میں گہرا سبق ہے کہ ان لوگوں سے تکبر کا سلوک نہ کریں, رحم کا سلوک کریں, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کو سمجھائیں, اور اگر نہیں سمجھتے تو یہ یقین رکھیں کہ ذرہ بھر بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتے, نظام جماعت کا نقصان نہیں کر سکتے. ہاں, ان کو بچانے کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں وہ ان کو خدا کا محتاج بنائے رکھتا ہے, لیکن اگر یہ حرص ہو کہ ان کے آنے سے ہمیں فائدہ پہنچے گا یا نظام کو پہنچے گا, تو یہ نحوست ہے, یہ رحمت نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ رحمت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان سے چشم پوشی کی جائے, ان کو سزا نہ ملے, نظام جماعت عمل میں نہ آئے, یعنی سرگرم عمل نہ ہو, اور ان کو اس لیے چھوڑ دے یہ لوگ صاحب رسوخ ہیں, صاحب دولت ہیں, صاحب عظمت ہیں, یہ شرک ہے, یہ رحمت نہیں ہے. رحمت کا مطلب ہے کہ دوسرے شخص کی کوئی بھی احتیاج نہیں ہے, پھر بھی آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں, اور یہ رحمت جو ہے یہ تو آفرینش سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی, جو آغاز ہوا ہے کائنات کا اس سے پہلے ہی خدا رحمان تھا, اور وہ جو بلو پرنٹ ہے کائنات کی تخلیق کا اس میں رحمانیت جلوہ گر ہوئی ہے. اس وقت سوائے رحمانیت کے کوئی اور صفت کار فرما تھی تو اس جہان میں نہیں اور دوسرے جہانوں میں ہوگی. یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی تمام صفات کسی وقت معطل تھیں, لیکن وہ جلوہ گر تھیں تو دوسرے جہانوں میں تھیں. جو جہان پیدا نہیں ہوا اس میں اگر وہ جلوہ گر ہوئی ہیں تو رحمانیت کے تابع, یعنی رحمانیت کے تابع ایسا نقشہ تشکیل دیا گیا جس کا فیض آئندہ آنے والی مخلوقات کو پہنچنا تھا. تو سب صفات کام کر رہی ہیں لیکن رحمانیت کے تابع براہ راست کسی ذات سے تعلق نہیں رکھ رہی, اور یہی معنی ہے کہ رحمانیت تمام صفات پر غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے, ان ذمہ داریوں کو سمجھے. میں پھر یہ یقین دلاتا ہوں نظام جماعت کو کہ اگر وہ غنی بھی رہیں اور رحیم بھی رہیں, رحمان بھی رہیں اور رحیم بھی رہیں, تو ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے. بے دھڑک نظام جماعت پر عمل کریں, ایک ادنا بھی غیر اللہ کا خوف نہ رکھیں. کوئی بڑا جدا ہو کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن آپ اگر بڑے بنیں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اس لیے ان کے جواب میں رحمت اور انکسار کا تعلق قائم رکھیں, باقی باتیں خدا پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نظام جماعت کو سلام کے دائرے میں, اس کے سائے میں اس طرح داخل فرما دے کہ نظام جماعت کا ایک ذرہ بھی سلام کی حفاظت سے باہر نہ رہے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.